सभी लगभग 4 बजे सो गए थे, पर आस्था बहुत जल्दी 1 से 2 घंटे की नींद के बाद ही उठ गई थी। और जैसे ही वो उठी, उसने आईने में अपने आप को देखा। कुछ पल आस्था अपने आप को देखती रही। एक ही दिन ने उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे सपने, सब कुछ बदल कर रख दिया था। आस्था की आंखों के किनारे फिर भीग गए थे और वो सोचने लगी कि उसकी जिंदगी किसी मोड़ पर आ गई है। चुलबुली आस्था, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर आज उसकी मुस्कुराहट उसके होठों तक नहीं पहुंची। वो खुद से शीशे में देखते हुए बोली, नहीं आस्था, तो इस तरह से नहीं टूट सकती। तूने इससे भी बुरा दिन देखा है, तो ऐसे कैसे टूट सकती है? तुझे हौसला रखना होगा और सिर्फ ये सोचना है कि तू इस कैद से कैसे निकलेगी। ये बंदूक वाले राक्षस अरमान सिंघानिया नाम का फंदा तेरे गले में अटक गया है, तो इससे कैसे निकलेगी? कुछ ना कुछ सोच आस्था, तो इस तरह से हार नहीं मान सकती। कहीं ना कहीं आस्था शीशे में खुद को देखते हुए खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी और हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कल रात दादाजी की बातें याद आने लगी और वो सोचने लगी कि अगर अरमान सिंघानिया बदल जाता है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं, तब आसानी से दादाजी उसे अरमान सिंघानिया के नाम से आज़ाद कर सकते हैं, साथ ही डॉक्टर बनने में उसकी मदद भी कर सकते हैं। आस्था, तो इस तरह से हार नहीं मान सकती। तेरी जिंदगी ने तुझे सिर्फ चुनौतियां ही दी हैं, इस शादी को भी चुनौती की तरह स्वीकार कर। कुछ सोचकर आस्था ने गहरी सांस ली और फिर जल्दी ही वो सबके सामने जाने के लिए तैयार होने लगी। आस्था ने शुरू से ही हार मानना नहीं सीखा था। बहुत कम उम्र में ही उसने जिंदगी को उस नजरिए से देखना शुरू कर दिया था जो नजर शायद किसी को काफी उम्रदराज होने पर आती है। सबसे पहले ताजा होकर उसने एक नया जोड़ा पहना, लेकिन अब आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तैयार होना है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। आस्था को ये नहीं पता था कि शादीशुदा लड़की कैसे तैयार होती है, लेकिन उसे इतना पता था कि वो इस तरह से सामान्य नहीं रह सकती, क्योंकि मनोरमा आंटी की बहू शादी के बाद किस तरह से सचती सवरती थी, ये सारी बातें आस्था को याद थीं। एक पल के लिए आस्था ने मलहीमन फैसला किया कि उसकी जिंदगी का मकसद डॉक्टर बनना है, लेकिन अभी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी उससे आज क्या बात करने वाले हैं, लेकिन अभी उसने खुद को थोड़ा बहुत तैयार करने के बारे में सोच लिया था। उसने अपने सामान में पायल देखी। उसकी नानी ने उसके लिए नई पायल भेजी थी जो उन्होंने बहुत पहले बनवाई थी, लेकिन आस्था ने कभी वो पायल नहीं पहनी थी, लेकिन आज उसने वो पायल पहन ली। और कुछ चूड़ियां भी थीं जो उसने शादी में पहनने के लिए लाई थीं। फिर आस्था ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी, हल्का सा मेकअप किया और मांग में लगे सिंदूर को बालों से छुपा लिया, क्योंकि उसे शर्म सी महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सब नया था और वो इस तरह से सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से ढक लिया और सिंदूर को बालों से छुपा लिया। जल्दी ही आस्था दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की ओर जाने लगी। सुबह 6 बजे दादाजी ने उन चारों को उठा दिया था। चारों के जॉगिंग करने के बाद दादाजी उन्हें हॉल में बैठे हुए थे। उन चारों के चेहरे पर मायूसी थी। नींद पूरी ना होने की पार्टी की वजह से पूरी रात सो नहीं पाए और शादी की तैयारियों की थकावट, उनके चेहरे उतरे हुए थे। ध्रुव तो गुस्से से दादाजी को घूर ही रहा था, तब सुमित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इस तरह से उन्हें मत घूर, कहीं ऐसा ना हो कि आज दादाजी तुझे ही सजा दे। चिढ़कर ध्रुव ने सुमित को देखा। आंखों में गुस्सा लिए उसने सुमित को अपनी आंखों से वार्न किया। फिर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और मुस्कुराने लगा, क्योंकि चारों एक दूसरे को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते थे। तब दादाजी ने कहा, तुम चारों के चारों नालायक हो। अगर सुबह जल्दी समय से नहीं उठोगे तो कैसे मालदार बनोगे, कैसे बुद्धिमान और स्वस्थ बनोगे? इसीलिए मैं तुम लोगों को सुबह जल्दी उठाता हूँ, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब जब जॉगिंग कराए हो, फटाफट एक एक करके अपने कमरे में जाओ, नहा धोकर ठीक 20 मिनट के बाद मुझे डाइनिंग टेबल पर मिलो और यहाँ आकर सीधा नाश्ता करो और उसके बाद अपने अपने काम पर जाओ, और समय से सबको घर पर आना है। अगर तुम लोग इधर उधर मौज मस्ती करने निकल गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। और चारों मासूम बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बैठ गए। तभी अचानक उन चारों के कानों में चूड़ियों और पायल की आवाज आई और चारों को ये आवाज मीठी और प्यारी लगी, क्योंकि इतने सालों में उन्हें पहली बार सिंघानिया मेंशन में इस तरह से पायल की आवाज सुनाई दी थी, और चारों गौर से सीढ़ियों की ओर देखने लगे। आस्था ने आज कोई घूंघट नहीं लिया था, वो सामान्य रूप से डरी सहमी हुई नीचे आ रही थी। जैसे ही उन चारों की नजर आस्था के चेहरे पर पड़ी तो वो चारों अपनी पलकें झपकना भूल गए और जहां भी बैठे हुए थे चारों वहां से खड़े होकर बेख्याली से आस्था की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आस्था के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही आस्था उन सबके सामने आ गई और चारों को अपनी ओर देखते पाकर वो थोड़ी घबरा गई। उसे थोड़ा असहज भी लगने लगा। जल्दी ही आस्था ने अपने सर पर दुपट्टा ले लिया और दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने उसे सौभाग्यवती सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। दादाजी का आशीर्वाद सुनने के बाद आस्था के गाल थोड़े से लाल हो गए। तभी ध्रुव ने सुमित को कोहनी मारी और सुमित ने आकाश को, आकाश ने आहान को, चारों दूसरों को कोहनी से मार रहे थे। और तभी दादाजी उन चारों की ओर देखते हुए बोले, अब ऐसे ही खड़े होकर अपनी भाभी को देखते रहोगे या कुछ बोलोगे कि? चलो चारों के चारों अपनी भाभी के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। चारों हैरानी से मुंह खोलकर दादाजी की ओर देखने लगे। तब आहान ने कहा, क्या दादाजी, आप अभी भी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? आशीर्वाद लो, हम तो इस तरह से विश करेंगे। ऐसा कहकर आहान ने आस्था को साइड हक धरके उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आस्था इस तरह से छूने पर पूरी तरह से सहम उठी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत अजीब स्थिति थी। वो जिस माहौल में पली बढ़ी है वहां ये सब कुछ बहुत ही गलत समझा जाता था, लेकिन ये सब वो कैजुअल तरीके से आस्था से बात कर रहे थे और आस्था के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी सुमित आगे आया और अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भाभी। जैसे ही आस्था ने सुमित की बातें सुनी तो वो थोड़ी शर्मा गई, फिर उसने भी हाथ मिला लिया। तब आकाश आस्था के सामने आया और एक प्यारा सा सफेद फूल आस्था को देते हुए बोला, आई विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग भाभी। सभी ने अलग अलग तरीके से आस्था को गुड मॉर्निंग विश किया। आस्था के चेहरे की खुशी देखकर दादाजी ने राहत की सांस ली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए ऑब्सेस्ड क्रुएल हबी, और दोस्तों लाइक शेयर रिव्यू जरूर दें। मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों।